हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के गीतामृत कार्यक्रम में। आवाज कुछ अलग लग रही, सुनाई दे रहा है पीछे तक? हरे कृष्णा। तो चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान की व्याख्या भगवान अर्जुन को कर रहे हैं, और हम इस नौवें श्लोक पर हैं जो कि न केवल इस अध्याय का बल्कि पूरी भगवद गीता का ये एक सुप्रसिद्ध श्लोक है। और आज हम भाग 6 पर हैं, 4.9 के। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। श्रील प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, हे अर्जुन, जो मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्वतः जानता है वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो हमने भगवान के जन्म की दिव्यता के संदर्भ में बहुत से कारण देखे कि भगवान का जन्म दिव्य क्यों और कैसे है, क्यों और कैसे होना चाहिए। और पिछली बार हमने जो कृष्ण जन्म की दिव्यता के 5 पहलू है, जनन वर्णन वंदन सांत्वन अथवा और गमन, तो हमने जनन के विषय में काफी भूरी भूरी चर्चा कर ली है। और फिर हमने पिछली बार वर्णन ये लिया था। आपको यदि याद होगा, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो हमारे जन्म के संदर्भ में सूचित किया जाता है। Our birth is simply informed, whereas Lord Krishna's birth is described. There is nothing to describe in our birth, only information. जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, बस। और यदि डिस्क्राइब करने कोई जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या डिस्क्राइब करेगा? रो रहा था या रो रही थी या वजन कितना हुआ, बस गिने चुने कुछ इंफॉर्मेशन के कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जन्म के संदर्भ में। तो परीक्षित महाराज ने क्यों वर्णन के विषय में कहा सुखदेव गोस्वामी को इस श्लोक में, अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूत भावन कृतवान यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरात्। विस्तार से वर्णन कीजिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके कर्मों के विषय में, क्योंकि परीक्षित महाराज ने उनको न केवल भगवान कहकर उल्लेख किया बल्कि भूत भावना और विश्वात्मा। और फिर ये जो सुप्रसिद्ध श्लोक है 10th स्कंद का, जहां परीक्षित महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से विश्लेषण कर कर कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन है वो किन किन के लिए प्रभावशाली है। निवृत्त तर्षैर उपगीय मानात भवौषाधात शुत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विना पशुघ्नात। तो तीन प्रकार के जो प्रभाव हैं, निवृत्त तर्षैर उपगीय मानात कि जो इस भौतिक संसार की तृष्णा जो है, लिप्सा, तर्षा, प्यास, जो निवृत्त हो चुके हैं वो करते क्या हैं? उपगीयमान, वो गान करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके कर्म उसका वर्णन का, वो गान करते हैं, उपगीयमाना का अर्थ है। और जो इस भौतिक संसार में त्रस्त हैं या बीमार ग्रस्त हैं उनके लिए औषधि का काम, और छोत्र मनोभिरामात, और जो भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं उनके कर्णों के लिए रमणीय हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का वर्णन। तो तीन प्रकार के मनुष्य, विषयी, मुमुक्षु भी और मुक्तात्मा, हमारे भागवत के टीकाकार हुए हैं श्रीधर स्वामी, तो उन्होंने जो श्लोक हमने लिया परीक्षित महाराज द्वारा कहा गया उस पर उन्होंने टीका की है कि तीन प्रकार के ये लोग होते हैं जो लिप्त हैं इस भौतिक संसार के विषय वस्तु विषय भोग में, तो वो है विषयी। और जो त्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं भोगते भोगते और दुख पाते पाते, तो वो दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, मुमुक्षु भी, डिजायरस ऑफ लिबरेशन। अब उन्हें इस भौतिक संसार के परे क्या है, वास्तविक शांति क्या है, सुख क्या है, आनंद क्या है, वो उन्हें प्राप्त करना है। और जो उसे प्राप्त कर चुके हैं वो है मुक्तात्मा। तो हम पिछली बार ये स्लाइड लेने वाले थे, हमारी अंतिम स्लाइड होने वाली थी, तो यहां से हम हमारा भाग छह इसकी शुरुआत करेंगे। तो तीन प्रकार के जो मनुष्य, विषयी, मुमुक्षु भी और मुक्तात्मा, तो जो श्लोक परीक्षित महाराज ने कहा उसमें जो तीन प्रभाव वर्णित हैं वो ये तीन प्रकार के मनुष्यों के संदर्भ में है। अब देखिए, जो मुक्तात्मा है वो तो भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म है और उनके जो कर्म हैं उनका वर्णन सुनते ही रहते हैं, न केवल सुनते रहते हैं बल्कि गाते रहते हैं, उपगीयमानात। तो उनके विषय में तो कोई प्रश्न ही नहीं है। अब जो मुमुक्षु भी है, मुमुक्षु भी जो है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके कर्म का वर्णन औषधि के समान है। देखिए, हमारे आचार्य सुंदर उदाहरण देते हैं कि गन्ने का रस वो किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए बहुत ही रुचिकर लगता है उसे, और वही गन्ने का रस जब किसी को जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया का रोग हो जाता है, तो वही गन्ने का रस उसे रुचिकर नहीं लगता बल्कि औषधि का काम करता है। कब तक? जब तक कि उसके जीवा पर वो स्वाद पुनः ना आ जाए, तब तक कड़वा लगता है उसे। गन्ने का रस उसके अंदर कहां कड़वाहट है, पूरे गन्ने के रस के अंदर यदि कुछ है तो केवल मिठास। तो यह उदाहरण दिया गया है कि कृष्ण कथा, कृष्ण जन्म का वर्णन इस गन्ने के रस के समान है। हम लोग अभी जो ये दूसरी कैटेगरी में हैं, मुमुक्षु भी, और शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण की कथा वो कड़वी लगती है हमें, अब कुछ समय पश्चात जब थोड़ा थोड़ा स्वाद आ रहा है तो गन्ने का रस, यही कृष्ण का था, कभी कभी मीठी लगती है, थोड़ा ज्यादा समय तक कृष्ण कथा हो जाए तो फिर कड़वी लगने लगती है। हमारे अनुसार जो कृष्ण कथा हो, जो ज्यादा हमारे व्यक्तिगत जीवन को चुनौतियां न दे, तो बहुत मीठी लगती है। जैसे ही कोई ऐसी कृष्ण कथा जिसके अंदर बहुत ही गूढ़ शिक्षाएं हैं, लेसन्स हैं, जो कि हमारे व्यक्तिगत जीवन को चुनौतियां देती हैं, ललकारती हैं, तब फिर वो धीरे धीरे वापस से पीलिया का रोग हमारे जिह्वा पर वापस आने लगता है। परंतु यहां पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन औषधि के समान मुमुक्षुभियों के लिए है। अब देखिए, एक दशम स्कंद के एक और टीकाकार हुए श्री हरि शौरी जी, वो यहीं कानपुर से ही थे इत्तेफाकन, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही है कि जो विषय मुक्तात्मा चर्चा करते हैं, विषयों को वो विषय पसंद नहीं आते, और जो विषयी हैं उनके जो विषय हैं मुक्तात्माओं को पसंद नहीं आते। आपको समझ में आ रहा है? तो कहते हैं कि ये दोनों में परस्पर हर समय एक प्रकार का विरोधाभास रहता है, मुक्तात्माओं में और विषयों में। दोनों को एक दूसरों के जो विषय है समझ में नहीं आते या पसंद नहीं आते, नापसंद करते। परंतु जहां पर भगवान श्री कृष्ण की लीला आ जाए तो दोनों पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं। विषय भी, इसलिए उस श्लोक में परीक्षित महाराज कहते हैं कि चाहे कोई पूर्ण रूपेण इस भौतिक संसार के इंद्रिय भोग में रचा पचा हो, उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण की कथा किस प्रकार से है? मनोअभिरामात, उसके मन और उसके कर्णों के लिए रमणीय है। इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा, येना वतारेण भगवान ईश्वर करोति कर्ण रम्याणी मनोज्ञानी चन प्रभो। कर्णों के लिए रमणीय और मन के लिए बहुत ही रोमांचक। देखिए, भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व जो भी प्रकार की लीलाएं की, यदि आप महाभारत पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, दोनों में जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं वर्णित हैं, उसमें आप देखिए कि एक भी ऐसा विषय भगवान श्री कृष्ण ने नहीं छोड़ा जो कि इंद्रिय भोगी उसमें नहीं लगे हुए। पॉलिटिक्स, लफड़े, स्कैंडल्स, एक शामंतक मणि की कथा है श्रीमद् भागवत में, जिसके अंदर भगवान एक कांड, जिसको बोलते हैं स्कैंडल, शामंतक मणि का कांड भगवान ने प्रस्तुत किया। इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इनटू स्कैंडल्स एंड स्कैम्स एंड गॉसिपिंग, भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में थे तो ये शामंतक मणि को लेकर जो गॉसिपिंग द्वारका में हुआ भगवान श्री कृष्ण को लेकर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से कनेक्टेड है इसलिए मनोअभिरामात कहा गया। तो पॉलिटिक्स लीजिए, कोई स्कैंडल लीजिए, परिवार को कैसे चलाना है। भगवान एक पति बने, 16,108 पत्नियों के पति बने, और भगवान ने यह भी दिखाया कि कैसे एक पति को अपनी पत्नी को खुश रखना चाहिए। सत्यभामा ने कहा, उनको पारिजात का जो पुष्प है इंद्रलोक में वो गए, जब सत्यभामा और भगवान श्री कृष्ण इंद्रलोक गए थे एक बार, तो वहां पर सत्यभामा को पारिजात पुष्प बहुत पसंद आया। तो अब उनका डिमांड था कि भाई मुझे ये पारिजात पुष्प हर समय के लिए चाहिए, भगवान ने तो एक पुष्प लाकर दे दिया। नहीं नहीं, एक पुष्प से क्या हो, और हम सब देखते हैं पारिजात का पुष्प कितनी जल्दी मुरझा जाता है। तो डिमांड ये था सत्यभामा का, पूरा वृक्ष चाहिए मुझे। अब ऐसा नहीं था कि कहीं नर्सरी से जाके दूसरा कोई पौधा ले लें, द्वारका में वो लगा देंगे, नहीं यही चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण, वो तो भगवान है, जितने सारे वृक्ष योनियां सब उनसे ही उद्भूत हुए हैं, तो उन्होंने वो पूरा पारिजात का वृक्ष ट्रांसपोर्ट कर दिया। उसके बदले फिर इंद्र खफा हुए, वो अलग स्टोरी। अब देखो इंद्र भी, देखो इंद्र लोक में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए, एक पारिजात वृक्ष भगवान ने ले लिया तो ये खफा हो गए। तो भगवान ने सिखाया कि कैसे गृहस्थ आश्रम में सुकून से शांति से कैसे रहा जाता, सिखाया अपने उदाहरण से। कोई यदि रोमांस में इंटरेस्टेड है तो भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा रोमांटिक कौन भगवान हो सकते हैं, उसके लिए अलग एक सेमिनार करना पड़ेगा। कोई यदि वीर रस वाला है, उसको वायलेंस चाहिए, तो भगवान ने 6 दिन के थे शुरू कर दिया था उन्होंने पुतना, इतनी बड़ी राक्षसी, उसके बाद शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर इत्यादि सारे, कितने सारे असुर, और अलग अलग तरीके से भगवान ने वो वीर रस प्रदर्शित किया। अच्छा, कोई सर्कस देखने के लिए बहुत उत्सुक यदि हो, मैं इसके विषय में सोच रहा था। अब ये देखिए, कालिया के ऊपर भगवान ने किया क्या, सर्कस में लोग क्या करतब करते हैं, ऐसे ऐसे करतब करते हैं कि कोई ना हाथी जो है वो छोटी सी स्टूल पर खड़ा हो गया, देखा ना, हाथी छोटे से स्टूल पर वो दोनों अपने आगे वाले पैर ऊपर कर कर नमस्कार कर रहा है, उस मुद्रा में सब लोग तालियां मारते हैं, क्या करतब है। यहां पर देखिए भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने डांस परफॉर्मेंस दिखाया, और वो भी एक सर्प, अब सर्प के जो फन होते कितने चिकने होते हैं, उसके ऊपर डांस करना, और सारे बड़े बड़े जो गंधर्व इत्यादि वो लोग सब आकर और अपना वाद्य बजा रहे हैं, और उन वो सब बहुत निपुण है अपने वाद्य बजाने में, तो वो लोग भगवान श्री कृष्ण के स्टेप को मैच नहीं कर पा रहे थे। भगवान इतने चुस्ती से फुर्ती से वो कालिया के फनों के ऊपर नृत्य कर रहे, तो सर्कस। तो आप देखिए कि जो भी विषयों के लिए, इंद्रिय भोगियों के लिए जो भी विषय, भगवान ने वो सब कुछ प्रस्तुत कर कर दिया। इसलिए यहां पर परीक्षित महाराज कहते हैं छोत्र मनोभिरामात, कि उनके लिए भी एक ही लीला है, वही लीला मुक्तात्मा जब वो उसका वर्णन करते हैं, जैसे कि पुतनावध की लीला या द्वारका की लीला, वृंदावन की लीला, मथुरा की लीला, वही मुक्तात्मा जब वर्णन करते हैं तो वो निवृत्त तरशेर उस भाव में वर्णन उसका करते हैं, सुनते हैं, कहते हैं। जो मुमुक्षु भी हमारे तरह औषधि की तरह लेते रहते हैं कि हाँ एक दिन हम भी मुक्तात्मा की तरह, और जो विषयी हैं, जो मुमुक्षु भी नहीं है, जिनको कोई अंदाजा नहीं है कि ये मुक्ति क्या है या मुझे मुक्तात्मा बनना चाहिए, नहीं ऐसे चलो ये कृष्ण जो है बहुत ही मजेदार व्यक्ति, दिखने में भी एकदम अलग हैं, नीले नीले घुंघरालू बाल, बजाते भी बांसुरी और ऐसे स्टाइल में खड़े होके बांसुरी बजाते हैं, आज तक किसी फ्लूटिस्ट को नहीं देखा इस स्टाइल में खड़े होकर बांसुरी बजाते। और ऐसे ऐसे उनके नाम हैं, ऐसे उनके भजन हैं, उनकी लीलाएं, तो अलग अलग लेवल पर। अब देखिए, ये केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा के संदर्भ में ही संभव है कि अलग अलग लेवल पर एक ही कथा के इफेक्ट्स अलग अलग है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति यदि कुछ कहे या कुछ व्यक्ति के बारे में कुछ कहना है तो समय के अनुसार, देश काल पात्र के अनुसार उसको कहना होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कहे कि मैंने जवानी में बहुत पराक्रम किया था, तो जब वो ये लाइन कह रहा है कि मैंने जवानी में बहुत पराक्रम किया था, उसका अर्थ क्या है? अब वो जवान नहीं है। इंग्लिश की टीचर ने ग्रामर सिखाते हुए बोर्ड पर लिखा आई एम ब्यूटिफुल, विच टेंसेस? स्टूडेंट ने कह दिया पास्ट टेंस। तो वही एक मुद्दा किसी व्यक्ति के संदर्भ में हम हर समय वो एक गुण उस व्यक्ति का उसके पूरे जीवन काल तक नहीं कह सकते कि हां वो हर समय सुंदर था या वो हर समय विद्वान था, वो हर समय धनवान था। नहीं, उसको कॉन्टेक्स्टुअली समझना होगा, समय के अनुसार, टाइम स्पेस के अनुसार उसको समझाना होगा, तब जाकर वो बात समझ में आएगी। एक बार एक बीवी अपने पति को शाम का समय, पति जो है अपना ऑफिस से आने के बाद इत्मीनान से न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, पत्नी कहती है एक बात बतानी थी आपको, पता नहीं कैसे बताऊं। तुरंत पेपर बंद कर दिया उसने। आप मारोगे तो नहीं? और वो टेंशन में आ गया, मारूंगा क्या बात है? नहीं नहीं, आप डांटोगे तो नहीं? अरे बात क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूं। अरे इतनी अच्छी बात, तो खुशी मनाने वाली बात है, ये मारना डांटना ये सब क्या बोल रही हो तुम? नहीं नहीं, ऐसी मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि कॉलेज में मैंने पिताजी को एक बार बताई थी बात, तो बहुत डांट पड़ी थी, तो मैंने सोचा पहले कंफर्म कर लो। अब देखो ये है अलग अलग समय के अनुसार, वही बात जो भूतकाल में उसने बताई तो उसको डांट पड़ी, मार पड़ी, वही बात जब शादी होने के बाद बताई तो पेड़े बांटे गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में कोई भी स्टेज पर हो, चाहे चाहे वो मुक्तात्मा की स्टेज पर हो, मुमुक्षु भी विषयी की स्टेज पर हो, निवृत्त तर्षेर उपगीय मानाद भवौषधा छोत्र मनोभिरामाद, जो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के कथा का वर्णन उपयोगी है। हम कौन से मुद्दे पर हैं? वर्णन, कि कौन होगा इस संसार में जिसके जन्म और जिसके कर्म के वर्णन का विश्लेषण इस प्रकार से दिया गया हो। दैट्स हाउ वर्सटाइल कृष्णास जन्म एंड कर्म इज। तो अब हम देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ जो जो जुड़े उनका भी वर्णन बताया गया है। अब यहां पर देवकी और वसुदेव, इससे पहले हम यदि और अतीत में जाएं, श्रीमद् भागवत भगवान के अवतरण के अतीत में, तो जैसे बताया गया कि भूमि देवी आक्रांत अवस्था में ब्रह्मा जी के पास जाती हैं, कहती हैं कि पापियों के पाप के वजह से मैं त्रस्त हूं, और ब्रह्मा जी फिर पूरे 33 करोड़ देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचते हैं। क्षीरोदक्षाय विष्णु को वो आग्रह करना चाहते हैं, भूमि देवी की ओर से आग्रह करना चाहते हैं। तो अब देखिए कि भगवान के अवतरण के लिए कितने लोग एक साथ जुटे, भूमि देवी, ब्रह्मा जी, 33 करोड़ देवता क्षीर सागर पर पहुंचे, और ये लोग सब, ब्रह्मा जी देखिए वो ओरिजिनल मैनेजर हैं, तो कैसे ब्रह्मा जी का मैनेजमेंट, कितने निपुण हैं अपने मैनेजमेंट में, मैनेजरियल स्किल्स में, इसमें समझ में आता है कि ब्रह्मा जी वो अपने साथ शिव जी को ले गए। और श्रीमद् भागवत में जो वो श्लोक कहा गया है कि ब्रह्मा जी शिव जी को ले गए, तो शिव जी का नाम ब्रह्मा जी कहते हैं त्रिनेत्राय, त्रिनेत्राय। तो ब्रह्मा जी अब जा क्यों रहे हैं कि राक्षसों का जो प्रकोप है उसको कम करने के लिए भगवान आप कुछ कीजिए, ये वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भगवान खुद आ जाएंगे। हा? कि ठीक है, आप किसी को शायद कहोगे कि भाई तुम जाकर वो राक्षसों का वध कर दो, इसलिए शिवजी को ले गए, क्योंकि शिवजी जो है वो अपनी तीसरी आंख खोलते ही काम तमाम कर देते हैं लोगों का, इसलिए शिवजी को ले गए कि यदि भगवान बोले कि भाई शिवजी को जाके कहना तो शिवजी को साथ में ले चलता हूं, फिर मना नहीं करेंगे सामने आमने सामने बात हो जाए। इज एक्सपर्ट मैनेजेरियल स्किल्स, बहुत मैनेजमेंट दृष्टिकोण से मैं देख रहा था, तो इसलिए शिवजी को साथ में ले गए कि वो सामने बोल देंगे तो फिर मेरे को वापस से बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रह्मा जी शिवजी को बोले थोड़ा स्टेटस में प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए साथ में ले गए। और फिर ब्रह्मा जी 33 करोड़ देवताओं को साथ में ले गए, क्योंकि अब सभी लोग त्रस्त थे, भूमि देवी आकर जो वो शिकायत की है और बाकी सारे जो देवता हैं वो भी त्रस्त हैं, तो वो लोग सबको साथ में लेकर कि ये दिखाने के लिए कि भाई आप लोगों की जो शिकायत है आप लोगों के सामने मैं भगवान को प्रस्तुत कर रहा हूं, कोई इसमें छिपा नहीं रहा कि भाई मैं अकेले गया, पता नहीं क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए सारे देवताओं को ले गए। और ब्रह्मा जी जो हैं वो पूरी बुद्धि के बने हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि लगाई और बुद्धि लगाकर वो भगवान को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान हम लोग सब चाहते हैं कि आप लक्ष्मी देवी के साथ अकेले क्षीर सागर में रहते हो तो थोड़ी लीलाएं आपकी देखने मिलेंगी, हाँ, और हमारे लिए चर्चा के विषय बढ़ेंगे, तो इस प्रकार से वो प्रस्तुत करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु को ताकि वो स्वयं अवतरित हो। अब देखिए, तो भगवान ने तुरंत देवतागण जो आए थे, देवतागण को अलग अलग प्रकार के ड्यूटीज नियुक्त कर दी कि भाई तुम इस प्रकार से यहां तुम पहले जाओ, तुम यहां पर जाओ, तुम वहां पर जाओ, भगवान आने से पहले, भगवान अवतरित होने से पहले। तो हम ये मुद्दा इसलिए ले रहे हैं कि जब कोई बड़ा व्यक्ति कहीं पर जाता है तो कितने लोग जुट जाते हैं, जितने लोग जुटे हैं उसे समझ में आएगा कि वो व्यक्ति कितना बड़ा है। जैसे 26 जनवरी को कौन आ रहे हैं, बैरक ओबामा। अब पहली दफा 26 जनवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं। अब उनके सिक्योरिटी के लिए आपको अंदाजा नहीं होगा क्या क्या चल रहा है। मैं तिरुपति से अभी आया दो दिन पहले परसों, तो हैदराबाद एयरपोर्ट पर मेरी बैग्स वगैरह वो खोलने लगे, सब सामान बाहर निकालने लगे। तो मैंने पूछा क्यों भाई, देखकर कुछ अजीब लग रहा है आपको? नहीं 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 नहीं, बैरक ओबामा है, परेशान बेचारा सिक्योरिटी ऑफिसर, सब सब जगह पर सिक्योरिटी को बहुत ही बीफ अप कर रखा है, तो फिर ये बेचारा सिक्योरिटी ऑफिसर परेशान, सबके बैग्स इसको चेक करने पड़ रहे हैं। तो खोल खोल, नहीं नहीं वो बैरक ओबामा आ रहा है, हमको परेशान कर रखा है। तो बीड बैग देखी उसने बैग के अंदर, तो उसको बहुत अजीब लगा कि ये अलग अलग शेप में क्या है, ये टॉयलेट किट भी नहीं लग रहा है, ये है क्या है, सर की कोई टोपी भी नहीं लग रही। फिर उसके अंदर से वो निकाला, ये क्या चीज है? मैंने बोला भाई माला है, क्या चीज, आप भारतीय माला नहीं जानते, क्या करते हो आप इससे? आपका नाम तो जप नहीं करता, भगवान का करता हूं, कैसे करते हो बताओ? तो खैर प्रचार का थोड़ा मौका मिला तो फिर 30 सेकंड के लिए जप कर उनको बताया। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, लोग क्या है कि भगवान का नाम ज्यादा हो जाए ना तो फिर सब कुछ पूरा बैग पैक कर, जाओ जाओ जाओ, नहीं तो ये महाराज अभी इधर प्रवचन भी शुरू कर देंगे। तब फिर मैं प्लेन में वो न्यूज़पेपर में फ्रंट लाइन में सब क्या क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो मैं पढ़ रहा था। तो सबसे पहले तो, और वो पढ़ते हुए मुझे यही ध्यान में आ रहा था कि कैसे दशम स्कंद में जो वर्णन है भगवान आते हैं तो कितने लोग जुट जाते हैं। यहां पर एक मर्त्य जगत का एक मर्त्य प्राणी है, कौन है ये राष्ट्रपति, इसके लिए 1600 जो यूएस सीक्रेट सर्विस के, यूएस सीक्रेट सर्विस के केवल राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए ये लोग, तो 1600 लोग अमेरिका से आए हुए हैं। कितने हैं? 1600 आए हुए हैं एक आदमी की सिक्योरिटी के लिए। सोचो कितना भयभीत है वो व्यक्ति। हम लोगों को लग रहा होगा कि क्या हमारा जीवन है, राष्ट्रपति देखो कितना भयभीत। उसमें लिखा गया था एवरी डे बैरक ओबामा एवरी डे रिसीव 30 डेथ थ्रेट्स, रोज धमकियां जान की, कितनी? 30 रोज, रोज हमारे प्रधानमंत्री उनको 20 रोज। तो अवश्य ही जब 30 धमकियां रोज उसको मिल रही हैं तो 1600 लोग पहले अमेरिका के आ गए। यहां पर तो खैर अपने हैं, अपने कितने पता है? 45,000 सिक्योरिटी पर्सनल फॉर इज सिक्योरिटी, 45,000 इंडिया के, वहां से 1600, और उसमें से 500 यूनिफॉर्म में है, बाकी जो है वो सब प्लेन क्लोथ्स में टूरिस्ट बन के घूम रहे हो, किसी को पता भी नहीं कि ये है कौन। हो सकता है नासिक में कोई घूमता फिरता यहां पर आ जाए देखने के लिए, हमको लगेगा इस्कॉन का कोई डिवोटी है, हरे कृष्णा आइए प्रभु जी। तो प्लेन क्लोथ्स में घूम रहे हैं क्योंकि 27 तारीख को 26 जनवरी के पश्चात वो आगरा जाने वाला है। तो दिल्ली से लेके आगरा तक जितने होटल रेस्टोरेंट्स दुकान वगैरह सबको सैनिटाइज किया गया है और सब बंद रहेंगे, सैनिटाइज करके बंद रखेंगे वो लोग जब वो क्रॉस करेंगे। 15,000 सीसीटीवी सब जगह पर लगाए गए, उन वो जहां जिस होटल में वो रहने वाले हैं उस होटल से लेके वो राजपथ और जहां जहां पर वो जाने वाले हैं सब जगह सीसीटीवी। तो कितना सिक्योरिटी एक आदमी के लिए, एक तो वो उसका खुद का एक प्लेन होता है जिसको कहते हैं एयरफोर्स वन, और पूरी दुनिया में ऐसा प्लेन नहीं है। ये जो एयरफोर्स वन खाली, ये उसके राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए बनाया गया है। इसकी ऊंचाई है 6 मंजिला जो बिल्डिंग होता है उतनी तो ऊंचाई ये प्लेन की है, और चौड़ाई इस प्लेन की एक फुटबॉल फील्ड के समान, इतनी बड़ी चौड़ाई है इस प्लेन की। और फिर इसके साथ ये राष्ट्रपति की खुद की एक गाड़ी आती है, इस गाड़ी का नाम है द बीस्ट। देखो नाम भी क्या रखा है इन्होंने, लिमोजिन है बहुत बड़ी, कैडिलैक, बहुत बड़ी लिमोजिन है। और उसका वर्णन बताया गया है कि उसका जो शीशा है वो 6 इंच का है, बुलेट प्रूफ नहीं, बॉम्ब प्रूफ है, बॉम्ब प्रूफ। उसका जो दरवाजा है, उसकी कार का जो दरवाजा है, वो जो बोइंग 757 का कैबिन का दरवाजा होता है, इतना थिक उसका दरवाजा है। तो सब कुछ बुलेट प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ, यहां तक कि फ्यूल टैंक जो है उस गाड़ी का वो भी बॉम्ब प्रूफ है। बम भी लगा दिए तो फ्यूल टैंक को कुछ नहीं होगा, उसके टायर बुलेट प्रूफ है। यदि टायर भी कोई निकाल ले गया तो जो स्टील रिम है उसके ऊपर गाड़ी चल सकती है। मैं इसलिए ये सब बता रहा हूं कि कोई अगर पूछे कि इतने लोग क्यों लगे भगवान के अवतरण के लिए, तो सोचो एक आदमी के लिए कौन कौन लगे हुए हैं, कितने लोग। और उसकी ये जो लिमोजीन है कैडिलैक, पीछे 200 लीटर बैरेक ओबामा का ब्लड टाइप ब्लड बैंक बनाया हुआ है कि कुछ रास्ते में हो जाए, खून वून कम हो जाए तो वहीं से ब्लड उसको मिले। तो उसके खुद के ब्लड टाइप का ब्लड बैंक है उस गाड़ी के अंदर। तो इतना सिक्योरिटी ये एक शख्स के लिए, 3 दिन के लिए आ रहा है खाली। दहशत मचा दी है 3 दिन के लिए। और ऐसा नहीं कि आने के बाद कोई बहुत कोई इसकी कोई लीलाएं वगैरह होने वाली है। तो सोचो कि एक व्यक्ति 3 दिन के लिए आ रहा है, इतने लोग जुटे हुए हैं, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो जब इस संसार में आते हैं, हमारे इस भौतिक संसार में, कितने 125 साल, कितने साल रहे भगवान, 125 साल। और भगवान ने क्या क्या अनगिनत लीलाएं की और धर्म की स्थापना। तो इसलिए वर्णन, हम वर्णन पर हैं कि भगवान के जन्म और कर्म का जो वर्णन है, हम लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक श्लोक को 6 सेशन हो गए, ज्यादा नहीं हो गया, ज्यादा हो गया, अरे कुछ भी नहीं है, 6 सेशन क्या है। जब एक वो बैरक ओबामा आ रहा है उसके लिए पूरा पेपर वो भरा हुआ है, उसके सिक्योरिटी के लिए क्या क्या करने वाले, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या डर है उनको, उसके बारे में, उसकी गाड़ी के बारे में, उसके नौकर चाकर के बारे में, उसके जूते चप्पल, क्या पहनता है, क्या खाता है, कब सोता है, कब करवट बदलता है, कब ठोरता है, कब ये सब कुछ उसके बारे में। तो सोचो भगवान के बारे में हम लोग जो एक खास सेशन ले रहे हैं वो क्या है, कुछ भी नहीं है, इंसल्ट है। माधुर्य कादंबनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जब कोई जीव यहां से भगवत धाम जाता है, कोई भक्त शुद्ध होके भगवत धाम जाता है, तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को जब सामने रूबरू देखता है फर्स्ट टाइम, इतना वर्णन सुना है, इतना वर्णन किया है उसने, इतना श्रवण किया है, ये सब कुछ, जैसे कि यदि हम में से कोई सौभाग्यशाली पहुंच जाए भगवत धाम, तो इतने सेशंस आपने सुने हैं, जाके वहां पर कितनी उत्सुकता होगी कि कैसे फर्स्ट टाइम मैं जब देखूंगा। तो कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जब वो भक्त भगवान को आध्यात्मिक संसार में गोलोक वृंदावन में देखता है तो वो माफी मांगता है। किस बात की माफी मांगता है? भगवान मुझे सबसे पहले माफ करना, मैंने आपकी तुलना एक कमल से की। मैंने क्या है कमल? जब वो भगवान के एक्चुअल सुंदर मुख को देखता है तो उसको लगता है कि मैंने क्या गलत चीज से भगवान की तुलना की। आपकी तुलना मैंने एक बारिश के बादल से की। तुच्छ है वो सब, कोई मुकाबला नहीं है। ये सब जो हम तुलनाएं देते हैं कि भगवान का मुख एक कमल के समान है, या भगवान का जो रंग है वो एक घनश्याम घने बादल के समान है, ये सब बहुत ही जो सबसे हमको नियरेस्ट यहां पर दिखते हैं बस उससे हम तुलना कर देते हैं। नहीं तो भगवान अनगिनत रूप से, अनलिमिटेडली भगवान इन सब से सुंदर है। तो यहां पर हम देवकी और वसुदेव, जो कि इमीडिएटली भगवान श्री कृष्ण के माता पिता जो बने, जो माध्यम बने भगवान के जन्म अवतरण का, तो हम देवकी और वसुदेव का जो वर्णन बताया गया है दशम स्कंद में शुरुआत में, हम उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। लेसन्स फ्रॉम देवकी एंड वसुदेव। सबसे पहला लेसन, टेकिंग एंग्जाइटीज फॉर कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण को यदि अवतरित कराना है तो देवकी वसुदेव के जीवन को यदि देखो तो उनके जीवन की शुरुआत हुई कठिनाई, परेशानी, एंग्जाइटी जो उन्होंने ली, स्वीकार की भगवान श्री कृष्ण को अवतरित कराने के लिए। किस प्रकार की परेशानी? भगवान आठवें पुत्र के रूप में आए और उससे पहले छह पुत्र देवकी के सामने कंस ने आके नृशंस तरीके से मार डाले। तो यदि कोई ये पूछे कि भाई भगवान को यदि मैं पुत्र के रूप में चाहूं तो भगवान क्या ये कंडीशंस रखते हैं कि मेरे आने से पहले जो तुम्हारे छह पुत्र होंगे तुम्हारे आंखों के सामने उनका कत्ल होगा, क्या वो सहन करने के लिए तैयार हो? तब फिर मैं आऊंगा। ये कंडीशन अगर रख दिया जाए, बहुत ही विकट परिस्थिति देवकी और वसुदेव, लेकिन वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार थे। हालांकि उसके पीछे एक कथा है जो आगे चलकर हम वो कथा लेंगे कि ये छह पुत्र कौन थे, क्यों ये ऐसे मारे गए। क्योंकि जो दूसरा लेसन है देवकी और वसुदेव सिखा रहे हैं अपने उदाहरण से भगवान के जन्म के संदर्भ में, मेथोडिकल नेचर ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना अर्थात कृष्ण की भावना को प्राप्त करना हमारे लिए क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भावना को प्राप्त करना। तो उसका क्रम क्या है, कौन से क्रम को पालन करते हुए हम भगवान श्री कृष्ण की भावना को प्राप्त करेंगे, ये दूसरा लेसन। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देवकी और वसुदेव हमें सिखा रहे हैं कि इफेक्ट क्या है भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण करने का, इफेक्ट क्या होता है। वसुदेव जी ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया और अपने हृदय से भगवान श्री कृष्ण को स्थानांतरित किया देवकी के हृदय में, और देवकी के हृदय से भगवान देवकी के गर्भ में गए और गर्भ से भगवान प्रकट हुए। तो ये जो प्रोसेस वसुदेव देवकी से जो भगवान गुजरते हुए प्रकट हुए हैं, तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि इसका इफेक्ट देवकी और वसुदेव में क्या देखा गया। इसे आप देखो, किसी व्यक्ति के अंदर यदि संचारित हो जाता है ना कुछ, ऑब्सेस्ड जिसको बोलते हैं, पोजेस्ड या हाउंटेड, कईयों के अंदर कोई देवी आ जाती तो कैसे वो व्यवहार करते। सोचो कृष्ण अंदर चले गए, ये तो हमने कभी सुना नहीं। देवी सुना है, देवी किसी के अंदर आ जाती तो क्या होता है उसके साथ। तो ये वर्णन किया गया है कि कृष्ण अंदर चले गए, कृष्ण आ गए, देवी आ गई बोलते कृष्ण आ गए। हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। आज हम केवल जो पहला मुद्दा है, टेकिंग एंग्जाइटीज फॉर कृष्णा, तो इसमें लेसन हमारे लिए ये है, हमको लग रहा होगा कि भाई हमको कहां भगवान कृष्ण पुत्र के रूप में नहीं चाहिए भाई, नहीं हमने क्या मुद्दा लिया है, आएंगे भी नहीं अगर हम चाहेंगे भी तो, ऐसे हम लोग चर्चा कर रहे हैं जैसे ठीक है भाई चलेंगे अगर आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हमारे संदर्भ में देवकी और वसुदेव व्यक्तिगत रूप से भगवान जन्मे उनके पुत्र के रूप में, हमारे संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण उनकी जो भावना है, जैसे प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से कहा, इस्कॉन इज लाइक द वूम्ब ऑफ देवकी फ्रॉम वेयर कृष्णा हैज टेकन बर्थ अगेन इन द फॉर्म ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो हमें जन्म देना है कृष्ण भावनामृत को, इसलिए कृष्ण पैदा हुए देवकी वसुदेव को और हमारे लिए कृष्ण भावनामृत का पैदा होना एक समान है। तो फिर जो उन्होंने एंग्जाइटीज ली हमें भी लेनी है, वो भी एक समान होगा। अगर प्रोडक्ट एक प्रकार का चाहिए तो प्राइस भी उसी प्रकार का देना होगा। इसलिए सुखदेव गोस्वामी एक सुंदर श्लोक में कहते हैं कि जैसे एक कंस जैसा राक्षस वो किसी भी हद तक जा सकता है अपने स्वयं के स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने स्वयं की बहन को मारना, अपने बहन के पति को मारना, उनके बेटे को मारने पर उतारू हो गया। तो वो कहते हैं कि किम कदरिया नाम, कि कौन सा ऐसा गर्हित कार्य नहीं है कि कंस जैसा गर्हित व्यक्ति नहीं करेगा, और कौन सा ऐसा त्याग नहीं है जो देवकी और वसुदेव जैसे भक्त नहीं करेंगे भगवान श्री कृष्ण के लिए। बहुत ही सुंदर उत्प्रेक्षा है सुखदेव गोस्वामी की, तो वो मैं लेना चाहूंगा। जैसे हम लोग सब के अंदर परेशानी झेलने की आदत है ना, भौतिक संसार में रहते हुए यदि हम आदि हो गए हैं किसी एक चीज से, अलग अलग आदतें होती है ना, एक आदत सबके लिए कॉमन है, परेशान, कठिनाइयां, परेशानियां, दुख, पीड़ाएं, एंग्जाइटीज, स्ट्रेस इत्यादि, ये सब के हम लोग आदि हैं। तो हमें करना क्या है, ऑलरेडी हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, चाहे कितना भी हम 2015 में एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल दें, भैया हैप्पी न्यू ईयर, हाँ भाई तुम्हारा भी हैप्पी न्यू ईयर रहे, पिछली बार तो नहीं रहा, हर साल हैप्पी न्यू ईयर वो पटाखे चलाते हैं, फिर बाद में ये वो नाचते गाते हैं, आ गया 2015 आ गया, पिछले साल भी 2014 आ गया, ऐसे ही गा रहे थे, फिर जो शुरुआत हुई सब लोग हैप्पी न्यू ईयर बोलने के बाद में, फिर जब ऑफिस जाना शुरू किए तो जो चेहरे देखे ऑफिस के अंदर वो तो कोई हैप्पी चेहरे नहीं दिखे, फिर धीरे धीरे जनवरी गुजरा, फरवरी इत्यादि, जैसे ही समझ में आ गया भाई देखते हैं 2016 में क्या आएगा, ये तो निकम्मा निकल रहा है ये साल। तो हम लोग चाहे कितना भी मेहनत कर लें हैप्पी बनने का, हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं, हैप्पी एनिवर्सरी बोल देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं खाली, कम से कम बोल तो दे। लेकिन प्रैक्टिकली रियलिस्टिकली होता क्या है, परेशान, एंजाइटी। तो हम चर्चा करेंगे इफ एनीवेज वी हैव टू टेक एंजाइटीज इन आवर लाइफ, वेदर इट इज जॉब, फैमिली, एनीथिंग, व्हाई नॉट टेक इट फॉर कृष्णा। प्रस्ताव क्या है यहां पर सुखदेव गोस्वामी का, इफ एनीवेज कंडीशन लिविंग एंटिटी हैज टू टेक एंजाइटी, व्हाई नॉट टेक इट फॉर कृष्णा एंड गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड। क्योंकि इस संसार में चाहे हम कितना भी जूझ लें, परेशानियों को दूर करते 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 बाल सफेद हो जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे एक भक्त मुझे मुझे देखकर कह रहे थे, प्रभु जी आप खुद ही निकाल देते हो बाल। हम लोग तो इतना प्रयास कर रहे हो, ये लगाओ वो लगाओ, बाल उगते ही नहीं है। तो मैं कह रहा था कि ये भौतिक संसार है। भौतिक संसार कैसा है कि पहले वो हेलीपैड बनाता है, यहां हेलीपैड जानते ना, छोटा सा गोल रहता है, हेलीपैड बनता है, फिर रनवे बनता है, फिर पूरा एयरपोर्ट बन जाता है। तो मैंने कहा वो पहले हेलीपैड और रनवे बनने से पहले ही मैंने पूरा एयरपोर्ट बना दिया। तो इसलिए हम, ये बहुत ही गहन मुद्दा है कि क्यों ना हम भगवान के लिए वो परेशानियां उठाएं। तो देवकी और यशोदा, हम यदि इन दोनों में क्या डिफरेंस देखा गया, दोनों भगवान के माएं हैं, दोनों माताएं हैं भगवान की, देवकी और यशोदा। तो देवकी और यशोदा में यदि हम देखें कि भगवान ने दोनों से हमको क्या सिखाया, देवकी से भगवान ने सिखाया हाउ टू अचीव कृष्णा। क्या परेशानी कठिनाइयों से गुजरती हुई देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को पाया। और यशोदा का उदाहरण है हाउ टू सर्व कृष्ण, क्योंकि सेवा का मौका देवकी को इतना नहीं मिला जितना यशोदा माई को मिला। तो हम यशोदा माई की चर्चा आगे करेंगे। आज हम देवकी माता जो है, उन्होंने जो कठिनाइयां भगवान के लिए ली, और सुखदेव गोस्वामी जो ये प्रश्न हमारे सामने, ये प्रश्न, ये प्रस्ताव रख रहे हैं, इफ एनी वेज यू आर गोइंग टू बी इन एंग्जाइटी, वाई नॉट टेक अप एंग्जाइटी फॉर कृष्ण। और श्रील प्रभुपाद ने इसके विषय में बहुत कहा है। जब श्रील प्रभुपाद अलग अलग जो प्रोजेक्ट, जुहू का प्रोजेक्ट और वृंदावन का, और पाश्चात्य देश में जाकर जो इतनी कठिनाइयों को उन्होंने स्वीकार किया, ही एम्ब्रेस्ड एंग्जाइटीज फॉर कृष्णा, एंड ही सेड दैट इफ यू डू नॉट टेक एंग्जाइटी फॉर कृष्णा, यू हैव टू टेक एंग्जाइटी फॉर माया, देयर इज नो इन बिटवीन, देयर इज नो एस्केप रूट, सो बेटर टेक एंग्जाइटी फॉर कृष्णा एंड बिकम स्पिरिचुअल। तो प्रश्न ये है, व्हाट डज इट टेक टू अचीव कृष्णा। देवकी, इफ देवकी इज सिग्निफाइंग हाउ टू अचीव कृष्णा, देन डू आई ऑल्सो हैव टू फॉलो द सेम ट्रेचरस पाथ टू अचीव कृष्णा लाइक देवकी। इंपॉर्टेंट मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज दिस। तो आज हम शुरू करेंगे चर्चा, डूइंग 12 थिंग्स टू अचीव लॉर्ड कृष्ण। फर्स्ट माय क्वेश्चन इज, डू यू ऑल वांट टू अचीव कृष्ण? कोई ऑप्शन नहीं है, खैर। So if we all want to achieve Krishna, fasten your seat belt, get ready to follow in the footsteps of Devaki and Vasudev now. और फिर ये जानने के बाद हम कितने इंटेंसिटी से हरि बोल बोलते हैं फिर समझ में आएगा. तो ये एक हमने प्रेजेंटेशन हमारे संडे भागवतम क्लास में एक बार लिया था. तो क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है, कलयुग की हमारी मेमोरी है, तो कई लोग भूल भी गए होंगे और जो अटेंड नहीं किए उनके लिए नया होगा. बहुत बार नया ही होता है. जैसे मैं एक बार बता रहा था, एक वक्त मेरे को आके कहते प्रभु जी आपका हर लेक्चर मुझे नया लगता है क्योंकि पिछला वाला भूल जाता है वो. तो ये भक्तिनोद ठाकुर ने एक सुंदर भजन लिखा. भजन का एक पद है, उस भजन का ये पद है, विषय जे प्रीति एवे आचाय अमार, सेई मत प्रीति होकर चरणे तोमार. इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार से, बहुत सुंदर ट्रांसलेशन है. भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं, जस्ट एज हाउ आई हैव स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन टुवर्ड्स माय ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन, सिमिलरली लेट मी डेवलप अ स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन टुवर्ड्स योर लोटस फीट माय लॉर्ड. बहुत ही प्रैक्टिकल प्रपोजल है भक्ति विनोद ठाकुर का कि हमें कोई बड़े बड़े जो भगवान के पार्षद हुए हैं उनको नहीं देखना है कि वो कैसे भगवान की भक्ति कर रहे हैं. वो भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हम जैसे हमारे इंद्रिय भोग के विषय में सोचते रहते हैं, कितने इंटेंसिटी से सोचते रहते हैं, हम क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कहां सोऊंगा, कहां पर इंद्रिय भोग आराम कहां मिले, कितना हम उसके बारे में 24 घंटे. भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं बस वही इंटेंसिटी यूज करो, ऑब्जेक्ट बदल दो, खाली भगवान को रख दो. विषय जे प्रीति है, विषय के प्रति जो प्रीति है मेरी, जो आकर्षण है, बस वही आकर्षण आपके प्रति हो जाए. चरणे तोमार, आपके चरणों के प्रति है भगवान, तो मेरा उद्धार अपने आप उसमें निश्चित है. तो इसलिए 12 चीजें हम क्या चर्चा करने वाले हैं. मैंने 12 चीजें ली हैं हम लोग स्वयं के लिए कितने उत्साह से करते हैं. ये 12 चीजें हम कैसे हमारे लिए कितने उत्साह से करते हैं और हमें वो 12 चीजें भगवान के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहले प्रश्न पूछना चाहिए और फिर करना चाहिए. ये एक कमिटमेंट अपने जीवन में लेना चाहिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन, 12 में से जो पहला प्रश्न है, हाउ मच आर वी कॉन्शियस ऑफ आवरसेल्व्स. सिमिलरली हाउ मच आर वी कॉन्शियस ऑफ कृष्णा. अपने विषय में हम सुबह उठते ही हम शुरू कर देते हैं अपने विषय में सोचना, क्या मैं इसमें सही हूं या गलत हूं. हाँ नहीं, नहीं, आईना अगर साइड में रखेंगे तो देखेंगे नो. प्रभुपाद एक्सप्लेन्स अबाउट दैट ऑल्सो, व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट डोर इज माय एक्सटेंडेड ग्रेटिफिकेशन, सो दैट इज माइन ऑल्सो. व्हाई आई एम अट्रैक्टेड टू द नेबर, बिकॉज द नेबर इज माइन. You will not be attracted by Barack Obama's neighbor. So you are right. Only thing you have to understand a bit further, that even if somebody is attracted to someone else, that attraction is again stemming from, that is me. जाया में, बंध वर्गों में, असनम में, वसनम में, देयर इज अ नीति शास्त्र श्लोक कि ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी बीवी है, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा देश है, ये मेरा राज्य है, ये मेरा घर, ये मेरा गांव, ये मेरा प्रांत, सब कुछ मेरा मेरा, मैं इति में वृक्ष हंकाराम की वो ये कहा गया है वृको कि ये जो वुल्फ है वो वुल्फ ये मैं सुनता है बकरी का, जो बकरी की आवाज है ना वो भी ऐसी होती है मैं वो पकड़ लेता है उसको, काल वृको हंती। तो शुरुआत में जैसे हम उठे, मैं ये कहना चाह रहा था कि उठने से पहले जो हम स्वप्न अवस्था में होते हैं तो वो भी हमारे बारे में कुछ हमसे कनेक्टेड कि हाँ भाई मैं राजा बन गया हाँ, या मैं ये सुपरस्टार बन गया, ये मैं सिनेमा स्टार बन गया, ये मैं क्रिकेट स्टार बन गया, या मैं जा रहा हूं अमेरिका 4th of July उनके इंडिपेंडेंस डे के और वहां पर सब लोग लगे हुए हैं मेरा स्वागत करने। तो सपने में हम हमारे बारे में या हमसे संबंधित जो है उसके बारे में, और उठते सो शुरू हो जाता है। तो ये जो अभी भी जैसे कि हम बैठे हुए हैं, हालांकि हम ध्यान दे रहे हैं इस प्रेजेंटेशन पर, परंतु कितने स्पॉन्टेनियसली हम अपने बारे में कॉन्शियस रहते हैं कि अंदर 9 बज चुके हैं, भूख लगना शुरू हो गई, तो तुरंत हमारे अंदर हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि मैं भूख लग रही है मुझे, या अभी बहुत टाइम हो गया मैं एक ही पोजीशन में बैठा हूं, ये कुर्सी मुझे तकलीफ दे रही है, या कुर्सी बगल वाला तकलीफ दे रहा है, तो तुरंत हमारे शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, या शारीरिक कोई हमको कुछ अच्छा लग रहा है या मानसिक कुछ अच्छा लग रहा है वो भी फिर से घुमा फिरा के हम अपने बारे में ही सोचते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ये प्रश्न उठा रहे हैं, हाउ मच वी थिंक अबाउट आवरसेल्व्स एंड एज अगेंस्ट दैट, अगर वो पलड़ा रखें हम, एक तरफ हम अपने स्वयं के बारे में जो हम सोच विचार करते हैं और भगवान के बारे में कितना सोचते हैं, अगर वो हम रखें तो कौन सा पलड़ा भारी होगा। कई बार तो दूसरे पलड़े में कोई होता ही नहीं है, भगवान तो छोड़ दे, वो दूसरे पलड़े में भी हम अपने आप को ही डाल देते, जैसे वो प्रभु जी कह रहे थे एक पलड़े में मैं, दूसरे पलड़े में मेरे से संबंधित जो भी है, मेरा पड़ोसी, मेरा परिवार, मेरा राष्ट्र, मेरा देश, सब कुछ उसके अंदर। तो इसके संदर्भ में हाल ही में एक अच्छी कहानी मैंने सुनी, एयरपोर्ट कुकी स्टोरी, ये काफी प्रसिद्ध स्टोरी हो चुकी है, आप लोगों ने सुनी होगी, बट दिस सिग्निफाइज दैट हाउ सेल्फ कॉन्शियस वी बिकम। सो दिस लेडी, हर फ्लाइट गॉट डिलेड एंड शी परचेज्ड अ न्यूज़पेपर एंड अ पैकेट ऑफ कुकीज, and as she was sitting reading whatever she was reading, so she kept and she started to eat the cookie one by one, and the man beside her started to also take one from the same packet. Socho, to isko bada ajeeb laga, ye kaisa badtameez aadmi hai। तो ये एक कुकी उठाती, वो भी एक कुकी उठाता, ये एक उठाती, वो भी एक 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 करके वो कुकी का पैकेट खत्म हो रहा था, लास्ट का कुकी बच गया। तो इस आदमी ने क्या किया, उसको दो भाग में तोड़ दिया, आधा इसको दिया और आधा खुद खा लिया। ये सोचने लगी, वाह रे वाह, मेरे कुकी का पैकेट खाते हुए तू अभी मेरे को आधा देगा, दानवीर भी बन रहा है तू। तो कुछ कहा नहीं, बहुत बदतमीज लगा ये व्यक्ति इसको, जाके जब प्लेन में बैठी, प्लेन में बैठकर जब इसने अपना पर्स खोला तो इसे पता लगा इसके स्वयं का कुकी का पैकेट ऐसे का ऐसा था। तो वो उसके कुकी के पैकेट से खा रही थी। तब उसे समझ में आया कि वो बदतमीज नहीं, वो तो कितना शरीफ है कि वो मुझे अलाउ कर रहा था खाने के लिए, और लास्ट का जो बच गया उसने आधा तोड़कर दिया कि ये भी आधा तुम लो आधा मैं। सो दिस इज हाउ वी आर सो सेल्फ कॉन्शियस दैट वी डोंट रियलाइज समटाइम्स दैट हाउ पीपल आर बेनेवोलेंट ऑन अस, हाउ द लॉर्ड इज सो बेनेवोलेंट ऑन अस, but we are only thinking about how I can take all the resources for my sense gratification. So Bhaktivinoda Thakur through that bhajan is asking this one first question. Just like how much you think about yourself, start thinking with that same intensity and with that same quality about Krishna. Then, second, sorry, इसमें हमारे कुछ उदाहरण मैं भूल गया बताना कि कुछ ऐसे उदाहरण जो कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में हर समय चिंतन किया करते थे। तो सबसे पहला उदाहरण मदर यशोदा का कि मां यशोदा वो कुछ भी करती थी, चाहे वो दही बिलो रही हो, मक्खन निकाल रही हो, चाहे वो गाय को उनका दूध निकाल रही हो, घर का कामकाज, चाहे भगवान हो या न हो, माता यशोदा का चिंतन हर समय चलता रहता। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि संसार में यदि हमें चिंता से मुक्त होना है तो चिंतन शुरू करो, तब जाकर चिंता से मुक्त होंगे। दूसरा उदाहरण गोपियों का है, बहुत ही सुंदर उदाहरण गोपियों का है कि नारद मुनि अकस्मात वृंदावन पहुंचे, जब भगवान अपनी लीला वहां कर रहे थे तो नारद मुनि ने गोपियों को देखा, गोपियां वो ध्यानस्थ बैठी हुई हैं पद्मासन में और ध्यान लगा रही हैं किसी के ऊपर। तो नारद मुनि को लगा कि ये तो ग्वालन है और ये सब अपना कामकाज छोड़कर ये ध्यान किस पर लगा रही हैं, ये तो योगियों का काम है। तो जाकर उन्होंने जब पूछा तो गोपियों ने नारद मुनि से कहा कि हम ध्यान में हैं कि ये कृष्ण को हम हमारे हृदय से बाहर निकालें। अब देखिए बड़े बड़े योगी हम लोग सब जप माला लेकर बैठते हैं कि कभी तो भगवान आ जाए हमारे ध्यान में, और यहां पर गोपियां ये योग साधना में लगी भगवान को अपने ध्यान से बाहर निकालने के लिए। तो नारद मुनि ने पूछा क्यों भाई ऐसा क्यों, क्योंकि ये कृष्ण के वजह से मेरा काम नहीं होता यहां पर, ना तो घर के कुछ काम होते हैं ना घर के बाहर के कुछ काम होते हैं, हर समय ये कृष्ण के चिंतन के वजह से घर के कामकाज नहीं होते। क्या लेवल है देखो, अब देखो एक गोपियों का लेवल है कि कृष्ण के स्मरण के वजह से घर का काम नहीं हो रहा है, और हमारी स्थिति क्या है, घर के काम के वजह से कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है। इसलिए कई लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम कहते हो माला करो माला करो, घर का काम कौन करेगा। इसलिए सुंदर उत्प्रेक्षा की गई है जिसमें भगवान कहते हैं तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, तू तेरे काम में आप यहां पर बैठ बैठ जाओ। क्योंकि तू अगर काम में तो मैं प्रवचन में नहीं। तो भगवान कहते हैं तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में। तो गोपियां वो उसी श्रेणी की भक्त नारद मुनि एकदम अचरज में कि क्या स्तर है इनका। तो ये जो हम मुद्दा ले रहे हैं कि हाउ मच आर वी कॉन्शियस, तो गोपियों का उदाहरण प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज अब वो कहां पैदा हुए, हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य के परिवार में, सब जगह राक्षस लोग। कोई भी भक्त, कोई भी गीतामृत का कार्यक्रम नहीं अटेंड किया था उन्होंने, कोई इस्कॉन का मंदिर नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं, कोई प्रसाद नहीं, कोई कीर्तन नहीं, कुछ नहीं। और प्रहलाद महाराज के चारों ओर केवल राक्षस प्रवृत्ति के लोग, प्रवृत्ति के नहीं राक्षस लोग दोनों। तो प्रहलाद महाराज ने भगवान को सब जगह देखा, खंबे तक में देख लिया कि यहां पर है मेरे भगवान, विष पिलाया गया, विष में भगवान को देखा। समुद्र मंथन की लीला याद आ गई, जहां पर समुद्र मंथन में विष पैदा हुआ था, अग्नि में जब उनको फेंका गया तो अग्नि में वो यज्ञ की जो अग्नि होती है उसको, अग्नि को उस प्रकार से देख रहे थे। हाथियों के नीचे जब कुचला गया तो प्रहलाद महाराज हाथी को गजेंद्र के रूप में देख रहे। इसको कहते हैं चिंतन, कि रहते हुए, इस संसार में रहते हुए प्रहलाद महाराज, और वो भी ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के बीच में रहते हुए, मृत्यु सब जगह पर जब प्रहलाद महाराज की इर्द गिर्द मंडरा रही थी, वो सब मृत्यु में प्रहलाद महाराज ने भगवान को अपने देखा। और फिर श्रील प्रभुपाद का उदाहरण है। श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट किया था, देयर वॉज नेवर अ टाइम व्हेन आई फॉरगॉट कृष्णा। बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है, देयर वॉज नेवर अ टाइम व्हेन आई एवर फॉरगॉट कृष्णा। तो ये सब उदाहरण है, प्रैक्टिकल उदाहरण है, कि ये नहीं समझना चाहिए to be conscious of Krishna might be impractical. No, these are the examples of how these devotees were so conscious of Krishna. Ab dusra prashna, how much do we plan and secure for ourselves? How much do we plan and secure for Krishna or for Krishna consciousness? हम स्वयं का प्लानिंग कितना अच्छी से करते हैं कि अभी ये साल शुरू हुआ है, जनवरी का महीना, अभी अगले वीकेंड में इतनी सारी छुट्टियां आ रही, प्लान कर लेते हैं संडे मंडे सैटरडे, तीन दिन की छुट्टियां, एक दिन लेकर चार दिन चलो घूमने फिरने, प्लान करते हैं, टिकट निकालते हैं, सब कुछ पैकिंग करते हैं, पूरा प्लान करते हैं कि कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, वहां का होटल बुकिंग, फिर टैक्सी बुकिंग, ये वो सब कुछ। हमारा, हमारी छुट्टी हम प्लान करते हैं, हमारा महीना प्लान करते हैं, पूरा साल भर, कई बार तो 5 ईयर प्लान भी हो जाता है लोगों का। लेकिन कितनी बार हम भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में चीजें जो हैं वो उतनी ही निपुणता से प्लान करते हैं जितना कि हम अपने स्वयं के विषय में सब कुछ प्लान करते हैं। अब देखो ये सारी चीजें, हाउ वी प्लान एजुकेशन, जॉब, फैमिली एंड फाइनेंसेस। इनफैक्ट डिग्रियां होती है इसके पीछे, तो कि कैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, कि कैसे आप आपके फाइनेंस को अच्छे से प्लान करो, उसकी कंसल्टेंसी दी जाती है उसको, उसके बारे में फाइनेंस मिलता है वो कंसल्टेंसी देने पर, वो आपका फाइनेंस प्लान करेगा, उसमें उसका फाइनेंस प्लान हो रहा है। हाँ, लोग कैसे एजुकेशन प्लान करते हैं, जैसे कि हाल ही में एक विद्यार्थी के साथ मैं चर्चा कर रहा था फोन पर, तो मैंने वो विद्यार्थी पूछ रहा था कि ये आप लोग इतना सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड क्यों करते हैं स्पिरिचुअलिटी, मतलब जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि भक्ति मन के अंदर होनी चाहिए, इतना सब सुबह ये टाइम पे उठना, आपका दर्शन ये टाइम पे खुलता है, वही टाइम पे सब कुछ, ऐसे टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, इसको थोड़ा, कहना क्या चाह रहा था, डिसऑर्गेनाइज्ड रखो, लेकिन वो वर्ड यूज कर रहा था स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। तो मैंने कहा तुम स्टूडेंट हो, तुम ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाई करते हो कि हर दिन अलग अलग कॉलेज में जाते हो? हा? चलो आज के वाग चलते हैं, हा? हा? फिर हो गया, उब गए के वाग से, चलो संदीप फाउंडेशन में चलते हैं, या फिर दूसरे किसी कॉलेज में NDMVP में चलते हैं। क्या रोज तुम कॉलेज बदलते रहते हो? क्या तुम अपना एजुकेशन सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं कर रहे? जैसे प्रभुपाद को जब पूछा गया, व्हाई ओनली यंग पीपल आर कमिंग इनटू योर मूवमेंट, प्रभुपाद ने क्वेश्चन पूछा, व्हाई ओनली यंग पीपल गो टू यूनिवर्सिटी टू सीक एजुकेशन? सो वी आर ट्राइंग टू एजुकेट। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स टू एजुकेट। तो जैसे ये सारी चीजें, फैमिली प्लान करना, जॉब, एजुकेशन, फाइनेंसेस, कितना हम लोग समय बिताते हैं, पूरा जीवन बीत जाता है ये सब प्लानिंग में। हाउ मच डू वी प्लान एंड सिक्योर दीज थिंग्स फॉर कृष्णा? कितनी बार हम अपने स्वयं का जो साधना है, जप है, क्या हम उसको प्लान करते हैं? नहीं तो जप अपना चलता रहता है रात के 12 बजे तक, कई बार रात के 12 बजे तक जब चलता रहता है, और हम ये सोचते हैं कि भाई कीर्तनीय सदा हरि बोला गया है इसलिए पूरे दिन भर चलते रहना चाहिए। लेकिन बहुत सारी चीजें जब हम सिस्टमैटिकली प्लान करते हैं, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के लिए सिस्टमैटिक बने, हियरिंग, कृष्ण सेवा, कृष्ण प्रचार, जैसे श्रील प्रभुपाद ने इस कृष्ण प्रचार का प्लानिंग कितने सालों पहले शुरू कर दिया था, कुछ 20-25 साल पहले उन्होंने ये प्लानिंग शुरू कर दिया था कि कब वो जाएंगे पाश्चात्य देश, और फिर वो पाश्चात्य देश में जाकर कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। सो हाउ मच प्रभुपाद वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड ही प्लान्ड आउट टू सर्व कृष्णा एंड टू प्रेजेंट कृष्ण। तो फिर जो तीसरा प्रश्न हम हमारे लिए यदि ये सारी चीजें करते हैं, हाउ डू वी मैनेज क्राइसिस एंड हाउ डू वी मैनेज क्राइसिस इन आर कृष्ण कॉन्शियसनेस? हमारे जीवन में जो क्राइसिस की सिचुएशन, कोई विपत्ति, मान लो नासिक म्युनिसिपैलिटी ने कह दिया कि एक महीना पानी नहीं आने वाला है, क्राइसिस में तो हम लोग कैसे, अगर बिल्डिंग में रह रहे हैं, सोसाइटी में रह रहे हैं, नोटिस लगाया जाता है कि मोटर जो है रिपेयर के लिए जाने वाला है, आपके ड्रम भर लो, बाल्टियां भर लो, है ना। जैसे ही हमको पता लगता है लाइट भी जाने वाली है, मोटर भी रिपेयर के लिए जाए, सब लोग अपने अपने ड्रम भर लेते हैं। सब लोग ने किया ना, सब भर लेते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। तो ये तो मैंने एक बहुत ही छोटी सी बात कही है, पानी चला गया, या जो पता रहता है कि सैटरडे को कभी लोड शेडिंग होता है तो उससे पहले सब चार्ज वार्ज कर लेते हैं मोबाइल वगैरह। तो वैसे ही हमारे जीवन की बड़ी बड़ी जो विपत्तियां हैं, कैसे हम वो क्राइसिस को मैनेज करते हैं, हमारे शारीरिक कोई ऐसे टर्मिनल डिजीज आ गया उसको कैसे हम मैनेज करते हैं, कोई हमारे परिवार वालों के साथ कोई बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया उसको कैसे हम मैनेज करते हैं। लेकिन प्रश्न उस समय आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में हमको क्राइसिस नहीं दिखता है, इसलिए भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर कहते थे The only crisis is lack of Krishna consciousness. और कई बार ये जब हम सुनते हैं कि only crisis is lack of Krishna consciousness, कई बार हमको जब माला को देखते हैं सुबह सुबह तो लगता है ये crisis है। जब हम बुधवार के कार्यक्रम में आके बैठ जाते हैं और संडे के भागवतम क्लास में आके बैठ जाते हैं या बाकी प्रोग्राम्स में आके बैठ जाते हैं तो प्रसाद तो 1.5 घंटे बाद शुरू होने वाला है, तो जो 1.5 घंटे तक चलेगा उसको क्राइसिस मानते हैं फिर हम। तो जो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर ने कहा दैट लैक ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द ओनली क्राइसिस एंड वी आर सो अनफॉर्चुनेट दैट कृष्ण कॉन्शियसनेस अपीयर्स टू बी अ क्राइसिस। दिस इज द बिगेस्ट क्राइसिस। सो हाउ डू वी मैनेज क्राइसिस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस? अगर हम उदाहरण लें गोवर्धन लीला, पूरे ब्रज में संवर तक बादल को भेजा इंद्र ने विध्वंस करने के लिए। अब इससे बड़ा क्राइसिस क्या हो सकता है? मान लो इंद्र नासिक के ऊपर संवर तक बादल भेज दे, थोड़ी सी ठंडी बढ़ जाती है तो हम लोग पता नहीं क्या क्या फिर यहां वहां शेकुटी जलाओ, ये वो, ये पहनो वो पहनो, कितना 5 डिग्री हो गया था यहां पर, ठंडी बाजते फिर बजने लगता है, सब दांत बजने लगते हैं, ये वो। और सोचो कि कोई ऐसे क्राइसिस की संवर्तक बादल और बाढ़ उन संवर्तक बादलों की वजह से, तो उन्होंने वो क्राइसिस मैनेजमेंट किया कैसे? सब लोग भगवान श्री कृष्ण के पास गए और उन्हीं के वजह से ये हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने जो इंद्र की पूजा रोकी उसके वजह से ये सब कुछ बाढ़ आ रही है। लेकिन वो गए भगवान श्री कृष्ण के पास, कृष्ण कृष्ण महायोगी। तो गोवर्धन लीला में हम देखते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट ब्रजवासियों ने कैसे किया। महाराज कुलशेखर दक्षिण भारत के एक बहुत ही बड़े राजऋषि हुए, जो कि भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त रहे। तो इनके राजमहल का नियम था कि रोज सुबह जो उनके राज्य के कारभार शुरू करने से पहले वो रामायण से श्रवण करते, तो एक व्यक्ति रामायण से उनको सुनाता और वो इतना मग्न हो जाते रामायण की कथा, राम कथा में, कि एक बार वो सुनाते सुनाते उसने ये कह दिया कि रावण जो है वो सीता का हरण कर ले जा रहा है। तो वो इतने उस लीला के अंदर प्रवेश कर गए कि वो खड़े हो गए और पूरी सेना को तैनात कर लिया, बुला लिया, ये बन करो सेना इधर ले आओ और वो रावण को हम रास्ते में पकड़ेंगे। तब ये लोग सब पूरे जो उनके मंत्रीगण थे वो लोग सब परेशान किए, भाई ये ऐसा अगर हियरिंग करेंगे तो आए दिन हमको तो भागते रहना पड़ेगा इनके पीछे। तो उन्होंने फिर वो जो कथावाचक था उसको कहा कि भाई तुम रामायण में से ऐसे ही सेक्शंस लो सुनाने के लिए जो पीसफुल हो, थोड़े सीता स्वयंवर खुशी खुशी के जो पास टाइम्स है वो सुनाया करो, ऐसे जो उत्तेजित हो जाए वो ऐसे पास टाइम्स मत सुनाओ। तो ठीक है, हुआ क्या कि वो एक दिन बीमार हो गए, उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया रामायण से सुनाने के लिए और कहना भूल गए। तो बेटे ने रामायण सुनाया, शुरू किया, क्या रामचंद्र जी युद्ध कर रहे हैं रावण के साथ और वहां पर एक के बाद एक रावण के साथ युद्ध करते समय रावण का वो सर कट रहा है लेकिन फिर से एक और स्वर आ रहा है, ये वो, और रामचंद्र जी अकेले जूझ रहे हैं। तभी फिर से ये उत्तेजित हो, रामचंद्र जी के साथ केवल वानर है वहां पर, इतनी बड़ी सेना लेकर हम लोग करेंगे क्या, चलो लंका पर धावा बोलना। और ऐसे महाराज कुलशेखर निकल पड़े, अकेले निकल पड़े, और क्योंकि वो दक्षिण भारत तो वो समुद्र का तट पास में ही था लंका की ओर जाने के लिए, तो समुद्र के तट तक पहुंच गए महाराज कुलशेखर। अब समुद्र में प्रवेश कर गए रामचंद्र जी को मदद देने के लिए, प्रवेश कर गए समुद्र में। और जब समुद्र में प्रवेश कर गए तो अब बाकी सब इतने चिंतित कि हमारे राजा अब समुद्र में जा रहे हैं, क्या होगा इनका, कैसे रोके इनको। अब समुद्र का पानी धीरे धीरे उनके घुटनों से बढ़ते हुए जब ऊपर उनके सर तक आ गया, इतना वो अंदर प्रवेश कर गए, अब आगे तो समुद्र कितना गहरा होता है। तब पीछे से एक हाथ आया और महाराज कुलशेखर को हाथ रोक लिया आगे जाने से। जब वो पीछे मुड़े तो साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की। और रामचंद्र जी ने फिर महाराज कुलशेखर को अपने दोनों हाथों से उठाया और महाराज कुलशेखर को कहा कि ये समुद्र तो क्या, मैं अपने हाथों से तुमको भवसागर पार कराऊंगा। तो ये क्राइसिस मैनेजमेंट महाराज कुलशेखर किसका किया करते थे? रामचंद्र जी और उनके रामलीला में जो क्राइसिस होते थे उसको मैनेज करने के लिए खुद निकल पड़ते थे। अब हमने भी कितनी बार राम कथा सुनी है, है ना? सीता का अपहरण कितनी बार सुना है। हर समय वो जब भी राम कथा शुरू होती है उसके अंदर एक ही प्रसंग आता ही कि रावण आया सन्यासी का भेष लेकर। हम कहते हैं हाँ सुना है, और फिर सीता को अपहरण कर ले गया। हम लोग टाइम देखते हैं, जल्दी करो भैया। अगर वो कथावाचक एकदम विस्तार से बता रहा है कि कैसे वो लक्ष्मण रेखा, अरे लक्ष्मण रेखा जल्दी करना पार। फिर जटायु, अरे जटायु इतना टाइम लगा। तो हमारी स्थिति क्या होती है कि जब हम राम कथा सुनते हैं घड़ी देखते रहते हैं घड़ी घड़ी, परंतु ये एक्चुअल एब्जॉर्प्शन, जैसे ये एक सच्ची घटना मुझे एक भक्त ने, उड़ीसा के एक भक्त ने बताई। अब मैंने जब ये सुनी तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए ये एक घटना सुनकर। ये घटना ऐसी कि एक नाटक कंपनी उड़ीसा की, और वो लोग केवल भगवान के जो दशावतार हैं उनके ऊपर नाटक किया करते थे अलग अलग जगह पर जाकर। जैसे रामलीला होते हैं वैसे वो अलग अलग भगवान के जो दश अवतार हैं उनके ऊपर नाटक किया करते। तो उसमें एक व्यक्ति वो किरदार निभा रहा था नरसिम्हदेव का, लेकिन ये व्यक्ति इतना उस अभिनय में चला जाता कि वो उसके अंदर आवेश आ जाता, उस रोल का, उस किरदार का आवेश उसके अंदर आ जाता। तो वो नरसिम्हदेव बना हुआ तो इतना उस आवेश में आ गया कि हिरण्यकशिपु, अब उसको नाटक में हिरण्यकशिपु को मारना है, तो वो भूल गया कि नाटक चल रहा है। और वो इतना उस लीला में चला गया, उसने उस व्यक्ति को जो हिरण्यकशिपु बना हुआ था मार डाला उसको। अब पुलिस केस हो गया वहां पर, लोग तो वाह वाह क्या रियलिस्टिक सीन है, और यहां पे इसने सच में मार डाला उसको। तो पुलिस केस हुआ, तो जो जज था वो जज को ये लोग समझाने की कोशिश किए कि भाई ये हमारा जो एक्टर है ये एक्टिंग नहीं करता है, ये एक्चुअली उस आवेश में चला जाता है। तो जज को विश्वास नहीं हुआ, जज ने बोला कि ऐसी बात है ठीक है, तो अगली बार रामलीला करो, जज तब तक मैं एडजोर्न करता हूं ये केस को, रामलीला करो, इसको दशरथ बनाओ। एक्चुअली वो दशरथ बना, और जब रामचंद्र जी अयोध्या छोड़कर वनवास गए तो दशरथ के साथ क्या हुआ, इसने प्राण छोड़ दिया। एक्चुअली इसने प्राण छोड़ दिया। तो जज वो हक्का बक्का रह गया कि ऐसे भी लोग हैं, जैसे हम महाराज कुलशेखर के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं भक्तिनोद ठाकुर कि भगवान जब आकर किसी विपत्ति को दर्शाते हैं तो हम कितना भगवान को सहयोग देना चाहते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे व्हाट इज प्रीचिंग, प्रीचिंग मीन्स असिस्टिंग कृष्णा एंड रिलीविंग कृष्णा ऑफ द स्ट्रेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग धर्म। That is preaching. Krishna is in tension to establish dharma in this material world. And preaching means to assist Krishna, just relieving Krishna's stress. तो ये है महाराज कुलशेखर का उदाहरण. परीक्षित महाराज स्वयं के उनके जीवन में जो क्राइसिस 7 दिन में तक्षक आकर डसने वाला है, जैसे हम अक्सर कहे हैं, एक भी श्लोक पूरे श्रीमद् भागवत में नहीं है जब परीक्षित महाराज स्वयं की चिंता कर रहे हैं, तक्षक के विषय में पूछ रहे नहीं. उल्टा जब पूतना प्रवेश करती है, भगवान 6 दिन के हैं, पूतना प्रवेश कर गई है ब्रजमंडल में, परीक्षित महाराज चिंतित. और परीक्षित महाराज की चिंता दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चिंतित मत हो परीक्षित. अरे जहां कहां कहीं पर भी भगवान श्री कृष्ण के लीला का श्रवण कीर्तन होता है वहां पर कोई विपत्ति नहीं हो सकती, तो भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या विपत्ति होगी. तो ये जब आश्वासन सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया, तब जाकर परीक्षित महाराज वो अपने आप को संभाल पाए. तो ये स्टैंडर्ड है श्रवण का, महाराज कुलशेखर, परीक्षित महाराज, और फिर द्रौपदी. द्रौपदी ने जो द्रौपदी के जीवन की सबसे विकट परिस्थिति जब उसकी आई, तो द्रौपदी ने अपने विकट परिस्थिति में क्या किया आप लोग सब जानते हैं. अपने दोनों हाथ ऊपर कर हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे. दिस इज कॉल्ड एक्चुअल क्राइसिस मैनेजमेंट. सो फॉर नोइंग एक्चुअल क्राइसिस मैनेजमेंट वी शुड नो व्हाट इज एक्चुअल क्राइसिस. And what is actual crisis? Forgetting Krishna. Lack of Krishna consciousness. That is actual crisis. And what are we doing for that actual crisis? Taking up to Krishna consciousness, doing things to please Krishna, doing things to purify ourselves, to get rid of all the misgivings. That is actual management. Isliye आज हम यहीं पर विराम देंगे हमारे प्रवचन को, क्योंकि बहुत है. कितने पॉइंट्स हैं? 12 पॉइंट्स हैं. अभी तक हम तीसरे मुद्दे पर हैं, और क्योंकि हम महाराज कुलशेखर के स्तर पर नहीं है, क्योंकि हम परीक्षित महाराज के स्तर पर नहीं है, और इसलिए हमारे टेंपल मैनेजमेंट ने बहुत ही स्ट्रेटेजिकली घड़ी को मेरे सामने रखा है. और बहुत बड़ी घड़ी है वो, तो इसलिए चाहे आपको वो घड़ी नहीं दिख रही हो, मुझे दिखती रहती है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, बाधित हैं, इसलिए हमको टाइम और स्पेस के अधीन हमारा क्राइसिस मैनेज करना है. तो इसलिए देवकी और वसुदेव से हम ये सीखे, शुरुआत इसकी हम कर रहे हैं, टेकिंग एंग्जाइटीज फॉर कृष्णा. और भक्ति विनोद ठाकुर ने उस जो पद में कहा है कि जैसे मैं अपने स्वयं के लिए क्या क्या नहीं जतन करता हूं, तो ये प्रश्न वो पूछ रहे हैं हम सबसे. केवल उतना ही जतन यदि हम कृष्ण के लिए करें तो हमारा उद्धार निश्चित है. जय श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की, जय गौर प्रेमानंदी.
हरे कृष्णा. आज का जो प्रसादम है वो दो भक्तों